ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ ಹರಿ, ಹರಿ ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಿತ್ನೆ ತಾರೀಖ ಸೆ ಚತುರ್ಮಾಸ ಶುರು ಹೋ ಗ್ಯಾ? ಏಕಾದಶಿ ಚಾರ್ ತಾರೀಖ ಹೋತಿ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ನೌ ತಾರೀಖ ಹೋತಿ. ತೋ ಆಷಾಢ ಮಹೀನೆ ಕೆ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿ ಕೆ ದಿನ या आषाढ़ महीने के पूर्णिमा से ही चतुर्मास से आरंभ होता है. कुछ संप्रदाय एकादशी से चार महीने तक, कार्तिक महीने के शुद्ध एकादशी तक चतुर्मास से मानते हैं, और कुछ लोग, कुछ संप्रदाय कार्तिक महीने के पूर्णिमा तक, आषाढ़ महीने के पूर्णिमा से कार्तिक महीने के पूर्णिमा तक चार महीने का चतुर्मास पालन करते हैं. दोनों अपनी दृष्टि में सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कुछ संप्रदाय का तत्व अलग होते हैं, वो एकादशी से एकादशी का चतुर्मास मानते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको समझना है कि बाकी जितने जीव हैं दुनिया में, उनका भी एक समय होता है ना. पंछी के जीवन में भी समय होता है, जानवरों के जीवन में भी समय होता है, मछली का भी एक समय होता है, और पक्षियों का भी समय होता है, सांपों का भी, कीटकों का, सबके जीवन में उनके उनके जीवन का समय होता है. सब मानते हैं इस बात को. चाहे वो एक रात में कुछ कीटकों की तीन पीढ़ियां गुजर जाती है, जब आप सोते हो सुबह उठते हो तो एक कीटक की तीन पीढ़ियां समाप्त हो जाती है, और चौथी पीढ़ी फिर दिन भर चलती रहती है, रात को भी वैसे ही दिन में पता नहीं 24 पीढ़ी समाप्त हो जाती है. तो उनका समय है, और हम लोग मनुष्य हैं, हमारा 70-80 साल का जिंदगी है. बहुत रेयर लोग अपने ग्रेट ग्रैंडसन को देखते हैं, है ना. ग्रैंडसन को देख सकते हैं, नातू को, लेकिन पणतू को देखना मुश्किल है. इतनी पीढ़ियां आपके सामने गुजर जाना बहुत डिफिकल्ट है. तो कुछ समय ज़्यादा गाय का है, फिर कुछ समय हाथी का भी होता है, कुछ समय घोड़े का भी होता है, लेकिन ये मनुष्य जीवन का समय जो है ना, ये सबसे कीमती होता है. क्योंकि मनुष्य जीवन में जो समय आपको प्राप्त है, उस समय का इस्तेमाल करके आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं. इसलिए मनुष्य जीवन का समय जो है बहुत महत्वपूर्ण बना गया. बाकी आप कोई भी जीवन लेंगे तो पेपर में खबर नहीं आती कि गोविंद ने ताली बजाई तो 10 मच्छर मर गए, ऐसा पेपर में खबर आता है क्या, है ना. या ट्रक गुजर रहा था तो उसमें 1000 मूंगी मतलब चींटियां कुचल कर मर गई, पेपर में खबर आती क्या. लेकिन एक अगर टैक्सी उल्टी हो गई और 2 आदमी जख्मी है, 2 आदमी खत्म, तो हेडलाइन आती है, पुणे मुंबई के हाईवे पर जीप का अपघात. या बद्रीनाथ की यात्रा में जाते हुए बस गंगोत्री गंगा नदी में उल्टी हो गई, 50 लोग मृत्यु हो गए, 10 घायल हो गए. कुदर हिमालय में कोई बस उलटती नदी में गिरते तो मुंबई में खबर आती है उसकी. क्यों आती है? क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत कीमती जीवन है, इसलिए उस जीवन की हानि हुई या कोई लाभ हुआ तो उसका खबर आती है उसके अंदर. सबसे बड़ी मनुष्य के जीवन की कीमत की बात यह है कि मनुष्य जीवन में हम और आप एक अपने आप को पहचान सकते हैं कि हम कौन हैं. कुत्ता बिल्ली पहचानते नहीं, वो लोग कुत्ता बिल्ली मछली मच्छर यही जानते हैं, लेकिन केवल मनुष्य जीवन में ही हम समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। ये महत्वपूर्ण जानकारी मनुष्य के जीवन में मिल सकती है। और मनुष्य के जीवन में इतना दुर्लभ जीवन है मनुष्य का, नंबर वन, इतने सारे कीटक, मछली, पंछी और सस्तन और जमीन वाले प्राणी सब मिलकर 84 लक्ष योनि होती है, उसमें से एक मनुष्य का जीवन होता है। इतना सब चक्कर काटने के बाद में मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। तो वैसे ही मनुष्य एकदम बहुत दुर्लभ है। वो होता है ना सांप सीढ़ी का खेल खेला ना आपने बचपन में, बहुत आगे आगे पहुंचता है, 92 तक पहुंचता है, 92 गए तो फिर सांप के मुंह में जाता है, फिर 8 में आता है। तो आप बोलेंगे एक डाव खेलेगा तो 8 से 92 हो सकता है क्या? नहीं, वापस उसको 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 24, 35, 45 करके करके वापस 92 जाने के लिए पूरी यात्रा दोबारा करनी पड़ती है। वैसे ही इस मनुष्य जीवन के अंदर का अगर समझो आपने गड़बड़ हो गया आपका किधर तो भी और मृत्यु हो गई, और उस समय आपको आपका गतिविधि या आपका मन किसी जानवर के साथ घूम रहा था, समझो आप सोच रहे हैं कि हाथी कितना भाग्यवान है, देखो एक साथ में कितना खाना खाता है वो, मैं कितना भी कोशिश करता हूँ इतना ही खा सकता हूँ, मुझे बहुत सारा खाने की इच्छा है, ऐसा सोचते हुए हाथी के बारे में सोचते हैं आपकी मृत्यु हो गई तो आप अगले जन्म में हाथी बन जाएंगे। फिर हाथी ये साइकिल में किधर कौन से नंबर पे है वहाँ से दोबारा शुरू करना पड़ेगा पूरा मनुष्य बनने के लिए। हाथी के बाद दोबारा मनुष्य नहीं बन सकते, उसका एक साइकिल है, हाथी के बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद में मनुष्य। ऐसे कई शास्त्र में लिखा है कि हो सकता है गाय का जन्म लेने के बाद में अगला जन्म मनुष्य का मिल सकता है, ऐसा भी लिखा है। तो गाय बहुत सत्वगुणी जानवर है, तो मनुष्य से एकदम पास में है, वो लास्ट स्टॉप हो सकता है वो। ये फिक्स नहीं है, ऐसा एक अंदाज है। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद में अगर दोबारा गलती करके नीचे गिर गया ना, पतन हो गया उसका, तो वापस पूरा चक्कर काट के आना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है उधर से। अरे एक बार ये आदमी पहला मनुष्य बन चुका है, इसको शॉर्टकट में ले लो, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ये एक बात हो गई। दूसरी बात है कि मनुष्य जीवन के अंदर एक और दुर्लभ चीज है, वो ये है कि अपनी पहचान के साथ में आप सत्संग कर सकते हो। अभी दोपहर का मंगलवार का समय है, 3 बज चुके हैं, यहां पर कौन बैठा है? मनुष्य बैठे, केवल मनुष्य बैठे हैं। यहाँ कुत्ता, बिल्ली, सांप, कीटक, मच्छर नहीं बैठे हैं। और बैठे भी होंगे तो उधर कथा में सुनने के लिए नहीं आते हो, कोई पाव मिलेगा, ब्रेड मिलेगा, इसलिए आते हो। मनुष्य के लिए ही सत्संग है ना, वो सत्संग केवल मनुष्य के लिए होता है। मनुष्य के लिए भगवान ने ऐसा एंटीना दिया है जिसमें आप ये भाषा समझ सकते हो। भाषा किस जीव में होती है बताओ? कोई इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, गुजराती होता है क्या? कुत्ता बिल्ली के अंदर उतना अपना वो मैं होता है, उसमें समझ जाते हो क्या उनका मैसेज है। लेकिन हमारे मनुष्य के लिए कितनी भाषाएं हैं, व्याकरण है, कविता है, उसके अंदर गद्य है, पद्य है, मैसेज है, निबंध है ना, नाटक का स्क्रिप्ट अलग है, कविता अलग है, कितना चीज़ है हमारे लिए। तो वो भाषा के माध्यम से, संस्कृत की भाषा के माध्यम से, इंग्लिश, मराठी, गुजराती भाषा के माध्यम से हम लोग भगवद्गीता, भागवतम के ऊपर सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये सत्संग केवल मनुष्य जीवन के लिए। और अंत में ये सब सत्संग करके क्या प्राप्त करना है? भगवान को प्राप्त करना है, वो भी केवल मनुष्य के लिए है। और किसी भगवान के अवतार की या किसी भगवान के शुद्ध संत की अगर कृपा हो गई तो हो सकता है कोई कुत्ता स्ट्रेट भगवान को पास जाके मिल सकता है। अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है वो, अपने आप में उसको मनुष्य बनने के बाद ही वो अपने आप कुछ कर सकता है। खुद का मेहनत, खुद की कोशिश, खुद की साधना, खुद का कुछ नियम पालन वो मनुष्य बनने के बाद ही कर सकता है। कुत्ता बिल्ली की जिंदगी में वो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन किसी ने ऊपर से कृपा कर दिया उसके ऊपर, संत ने हाथ रख दिया उसके ऊपर, या भगवान ने कोई अनन्य कृपा कर दिया, तो सीधे कुत्ते के जिंदगी में प्रसाद पाकर वो सीधे भगवत धाम जा सकता है। लेकिन अपने आप के बलबूते पर नहीं, किसी पे कृपा के ऊपर ही कर सकता है वो। लेकिन आप लोग और हम लोग खुद साधना कर सकते हैं। आप लोग तय कर सकते हो, कल से मैं 16 माला जप करूंगी, कल से मैं एकादशी का व्रत करूंगी। कुत्ता नहीं कर सकता ऐसे, हमारे कुत्ते को बोलेंगे देखो कल से एकादशी करना पड़ेगा आपको, तो उसको कुछ समझेगा ही नहीं पहले क्या बोल रहे हैं आप। जबरदस्ती एकादशी खाना खिलाएंगे तो बेचारा खाएगा वो, लेकिन वो उसको समझेगा नहीं कि मैं व्रत कर रहा हूँ, उसको कंसेप्ट ही नहीं है उसका, वो समझता नहीं उसको। वो समझने की बुद्धि भी आपको भगवान ने दिया और करने की शक्ति भी भगवान ने आपको दिया। ये सब मैं इसलिए इतनी प्रस्तावना क्यों दे रहा हूं, यह आपको समझाने के लिए कि मनुष्य का जीवन बहुत कीमती समय का होता है, समय बहुत कीमती होता है उसके अंदर, और वो समय जो है वो भी अलग अलग समय पर अलग अलग कीमती होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिन के समय में सबसे कीमती समय कौन सा होता है बता दो। हाँ, सबसे अच्छा, शांत, भगवान को प्राप्त करने वाला, सबसे फेवरेबल, अनुकूल, हाँ, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं उसको, सूर्योदय के पहले। बहुत कम लोग देखते हैं सूर्योदय के पहले क्या होता है, अधिकतर लोग सूर्य आने के बाद सूर्य बोलता है अरे मैं भी आ गया तू उठ अभी, तो उठ जाते हैं। लेकिन मनुष्य के लिए कहा गया है कि सूर्योदय के पहले उठना चाहिए अगर मनुष्य है तो। और देखो आपके पहले कितने जीव उठ जाते हैं, देखो आप सबसे पहले पंछी उठ जाते हैं सबसे पहले। अभी तो अंधेरा अंधेरा ही है, अभी तो थोड़ा झुंझू मुंझू बोलते मराठी में उसको, झुंझू मुंझू मतलब अभी धीरे धीरे थोड़ा सा लाइट दिख रहा है इधर कोने में, तब तो पंछी पहले से अपना चिवचिवाट शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद मुर्गा आवाज देता है, फिर धीरे धीरे जरा जन जागृति होती है, फिर मनुष्य उठ जाता है। लेकिन कहा गया है मनुष्य को कि सूर्योदय के पहले उठना है आपको, और सूर्योदय के पहले स्नान वान करके शुद्ध होकर तैयार होकर सूर्य का स्वागत करने के लिए खड़े रहना है आपको पूर्व दिशा में, और सूर्य को आते हुए देखना है आपको, वंदन करना है उसको, कुछ प्रार्थना बोलनी है। तो दिन में अगर दिन 24 घंटे का गिना जाए उसमें 8 प्रहर होते हैं, एक प्रहर 3 घंटे का होता है, तो एक प्रहर 3 घंटे का सबसे पहला प्रहर जो है 3 से 6, ये सबसे पावरफुल कहा गया है। जैसा हमारे महाबलेश्वर में जब बादल आते हैं ना तो ईमेल अपना व्हाट्सएप की अपना मोबाइल की कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, जब फिर धूप आती है एकदम क्लियर स्काई होता है तो वापस कनेक्टिविटी हो जाती है, वापस आपका रेंज मिलने लगता है। वैसे भगवान का रेंज है ना, वो सुबह के समय 3 से 6 सूर्योदय के पहले बहुत पावरफुल रहता है, उनके साथ कॉन्टैक्ट करना, संपर्क करना, कुछ संबंध स्थापित करना बहुत ईजी रहता है। एक बार सूरज आ गया ना फिर तुरंत बेल की दरवाजे की बेल बजती है, दूध वाला आता है, भाजी वाला आता है, पेपर वाला आता है, अमुक वाला आता है, तमुक वाला आता है, कचरा लेने को आदमी आता है, फिर ये पोस्टमैन आता है, फिर और कोई पार्सल लेके आता है, फिर कुछ फलाना, आपको काम पे जाना है, ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन की भीड़, ये वो, उसको क्या बोलते हैं रजोगुण, एक्टिविटी, कार्य शुरू हो जाता है उसमें। आप फिर भगवान के लिए बैठ नहीं सकते, अरे चलो बीच में अभी ट्रेन में बैठ गया ध्यान लगा के बैठ गया क्या, वो लटकते रहते हैं आदमियों के बीच में, वो दबके लटकते रहते हैं, वो उसको कहाँ ध्यान करने का समय मिलता है, उधर स्थिति ऐसी नहीं उसकी। लेकिन घर में सुबह अगर उठ गया सूर्योदय के पहले तो आप एक जगह किसी भी कोने में बैठ सकते हो आराम से और ध्यान लगा सकते हो। वो हो गया दिन का। हाँ, दिन का मैंने बताया कि दिन का एक समय होता है जो बाकी समय से अधिक पावरफुल होता है। फिर आप 15 दिन में एक बार देखो, 15 दिन में एक बार कौन सा दिन पावरफुल है, एकादशी का दिन बहुत पावरफुल माना गया क्योंकि तो एक पंद्रह मतलब एक पक्ष में 15 दिन जब होते हैं तो उसमें एकादशी का दिन जो होता है ना 11वां दिन, चाहे वो कृष्ण पक्ष का हो या शुद्ध पक्ष का हो, मतलब शुद्ध पक्ष का हो या वैद्य पक्ष का हो, दोनों पक्ष का 11वां दिन कहते हैं हमारी चेतना जो है ना, हमारी आत्मा, वो भगवान के पास में रहती है उस समय आम दिनों से अधिक। तो ये 1 महीने का हो गया, 1 महीने में 2 दिन आप भगवान के पास में, और उस दिन में भी जो उस दिन का सुबह का समय है वो भी बहुत पावरफुल रहता है क्योंकि वो एकादशी का ब्रह्म मुहूर्त है ना, तो पावरफुल होता है। और 12 महीने में अगर आप देखेंगे तो कौन से महीने पावरफुल होते हैं, ये 4 महीने, 12 महीने में ये 4 महीने पावरफुल होते हैं, और ये 4 महीने में भी 1 महीना जहाँ सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है वो कौन सा होता है, वो है कार्तिक का। आषाढ़ पूर्णिमा टू श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा टू भद्रपद पूर्णिमा, भद्रपद पूर्णिमा टू आश्विन पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा टू कार्तिक पूर्णिमा, ऐसे 4 महीने होते हैं। तो ये 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं, और आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चतुर्मास में बारिश होती है भारत में, भारत श्रीलंका बांग्लादेश पाकिस्तान ब्रह्मदेश इतने जितने भारत खंड है ना, भारत खंड यहाँ पर पहले इंडियन कॉन्टिनेंट कहते थे उसको, भारत वर्ष इलावर्त कहते थे उसको, पाकिस्तान भी उसमें था पहले, अफगानिस्तान भी था उसके अंदर तो ये विशाल भारतवर्ष जो है इसके अंदर आम तौर पर ये 4 महीने आगे पीछे होता है, पहले पहले केरला में आता है, बाद में महाराष्ट्र में आता है, बाद में यूपी में आता है, बाद में जम्मू कश्मीर में आता है, लेकिन बारिश का मौसम होता है, खेती होती है। और ये 4 महीने में जब बारिश आती है ना तो क्या होता है, सब लोगों का पाचन शक्ति थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, हवा में नमी आती है ना तो पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में सारे विधि विधान और जो पूजा उपवास जितने भी है ना वो सब इसी महीने में कर दिए। वृंदावन में जाएंगे और यूपी में जाएंगे और कहीं नीचे जाएंगे तो 4 महीने में सब सन्यासी लोग घूमना बंद कर देते हैं, एक जगह रुक जाते हैं। घूमने वाले सन्यासी भी दगा तय करते हैं कि इस बार चतुर्मास से हमको केरला में करना है, इस बार चतुर्मास हमको वृंदावन में करना है, इस बार काशी में करना है, इस बार हरिद्वार में करना है, ऐसा फिक्स होता है उनका। फिर वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं इस दिन के पहले, और फिर एक ही दिन में बैठकर भजन करते हैं और दिन में एक ही बार खाते हैं, और रोज़ कितना जप करते हैं उसे 4 गुना या 5 गुना जप करते हैं, और बहुत ज़्यादा पूजा पूजा पाठ करते हैं, प्रवचन करते हैं। या अभी 4 महीने देखो हमारे मराठी गाँव में क्या होता है, हरि पाठ का पारायण होता है, ज्ञानेश्वरी का पारायण होता है, तुकाराम की गाथा का पारायण होता है, हाँ ऐसे कई भगवान के ग्रंथों का, रामायण का पाठ होता है, भागवत का पाठ होता है, कोई भगवान के जितने संदेश वाले जितने ग्रंथ हैं उनका पारायण होता है, लोग बैठ जाते हैं और पढ़ते हैं उसको, और वो पढ़ने के समय बोलते हैं कि जमीन पर बैठते हैं, रात को जमीन पर सोते हैं, और कोई हैवी खाना नहीं खाते, हल्का खाना खाते हैं, व्रत का ही खाते हैं, एक ही बार खाते हैं, है ना। ये सारे नियम 4 महीने में लागू हो जाते हैं। ये सब लोग, ये सब चीज़ें आप लोगों को विचार करने लायक हैं, क्योंकि आप सब लोग मनुष्य हो। आप लोग नहीं विचार करेंगे, चिंतन करेंगे इस विषय पर तो कौन करेगा, कुत्ता भी ले करेगा घर का, कि मच्छर करेगा, कि और साफ करेगा, कि मेंढक करेगा, आप ही कर सकते हो। लेकिन अभी कलयुग का समय ऐसा आ गया ना कि लोग विचार ही नहीं करते हैं, केवल ऐसा जीते हैं जिंदगी, जैसा आएगा वैसे जीते रहते हैं, सामने आएगा उसको भोगते रहते हैं, नहीं मिलेगा तो अगला आइटम भोगने का प्रयास करते हैं। गरीब का आदमी भी देखता है कि जो मिलेगा वो भोगना है, अमीर आदमी देखता है जो मिलेगा वो भोगना है, सबका ध्यान भोग के ऊपर है। जितना भी क्षमता है आपका, कितना पैसा आपके पास, उतना आपकी भाग दौड़ रहेगी, और अमीर आदमी की उतनी भाग दौड़ रहेगी, वो अपनी तरफ से भोग करते रहेगा, और सबसे अमीर आदमी जो है वो अपनी तरफ से अपना स्टाइल में, लेकिन भोग प्रवृत्ति सब जगह सेम है, जो मिलेगा वो भोगना है उनको। विचार करने की कोई जरूरत नहीं, क्या अच्छा बुरा, ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा, कौन सोचेगा उसको, भोगते रहो बस, हाँ जो मिलेगा उसको आनंद लेते रहो। लेकिन विचार करने के लिए तो मन दिया ना आपको, आपको मनुष्य क्यों कहा गया है, जिसको प्रगत मन है, जिसको विचार करने लायक मन है, जो अपने विचार को प्रकट कर सकता है, जो विचार को प्रगत डेवलप कर सकता है, विकास कर सकता है, उसी को मनुष्य कहा गया है। जिसको प्रगत मन प्राप्त है उसको मानव और मनुष्य कहा गया है। अगर वो प्रगत मन होकर भी सोचता नहीं है, विचार नहीं करता, चिंतन नहीं करता है, तो मनुष्य होकर फायदा क्या है उसका। जो केवल मन प्राप्त करके केवल सोचता है कि खाना कहाँ मिलेगा, सोना किधर है, और मादी कहाँ मिलेगी, और रक्षा कैसे करूँ, ये 4 चीज़ आहार, निद्रा, भय, सुरक्षा और मैथुन, ये 4 चीज़ों के लिए विचार करेगा तो फिर पशु मन हो गया ना वो। मनुष्य मन भी सोचता है ये, लेकिन मनुष्य मन उसके आगे भी जाके सोचता है, ऐसा क्यों, ये प्रश्न खाली मनुष्य पूछ सकता है, और आप लोग नहीं पूछेंगे तो फिर और कौन पूछेगा। नहीं बोलेगा प्रभु हम तो अटेंडेंट है, हम लोग को क्या अभी पूछेंगे क्यों। आप डॉक्टर हो तो आप क्यों पूछ सकते हो, हम लोग क्या पूछेंगे। नहीं, मनुष्य है, सब लोग पूछ सकते हैं। तो ये चतुर्मास जो है ये 12 महीने के एक वर्ष के 12 महीने में 4 महीने का पवित्र काल कहा गया है। ये 4 महीने से और कौन सा पवित्र महीना है बताओ, पहले है क्या है वो बताओ, नहीं तो नहीं बताओ। अधिक मास जो हर साल में नहीं आता है, वो 3 साल में एक बार आता है, वो तो कार्तिक महीने से भी अधिक पावरफुल बताया गया। 3 साल में जो 30 दिन आते हैं ना कार्तिक अधिक मास के, कभी आषाढ़ आता है, कभी श्रावण आता है, कभी भाद्रपद आता है, कभी अपने अपने नंबर से आता है, उनका एक सिस्टम है, पूरा पूरा भव्य गणित है उसका। वो 3 साल के अगले साल में अधिक महीना आने वाला है, 2015 में आया था आषाढ़ वाला। जब आषाढ़ वाला आता है तो जगन्नाथ जी अपना शरीर बदली करते हैं, हो गया वो 15 में, भाई 18 में कोई और महीना अधिक आएगा। वो ये चतुर्मास के एडिशनल एक महीना होता है, चतुर्मास को लग के आता है वो, और चतुर्मास से लग के चतुर्मास से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। भगवान ने उसको अपना नाम ही दिया, पुरुषोत्तम मास, बोला मेरा मास है ये, अपना ही नाम दिया, और बोले ये मास में जो भी व्रत करेगा वो सीधे मुझे प्राप्त करेगा, इतना उसको पावर दे दिया भगवान ने। इसका मतलब पावर किसको दिया, समय को ही दिया ना। महीना मतलब क्या, समय तो है, वो 30 दिन का समय है, वो उस 30 दिन के समय को भगवान ने शक्ति दे दिया कि इसमें जो भी करोगे सीधा मुझे मेरे तक पहुंच जाएगा, बीच में कहीं हॉल्ट नहीं होगा उसका। और ये बार बार दोहराने की प्रयत्न करूंगा मैं कि सारे समय जो है ना, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय, 15 दिन में एकादशी का समय, 12 महीने में 4 महीने का समय, 3 साल में मिलकर अधिक मास का समय, ये सारा मनुष्य के लिए है। इसमें सारे व्रत मनुष्य को करने हैं, कोई व्रत 1 महीने का कुत्ते को करना है, 1 महीने का बिल्ली को करना है, ऐसा किधर लिखा नहीं है। सब व्रत मनुष्य को लिखा है। और बाकी व्रत भी जो है, सोमवार का, शंकर का, और शुक्रवार का देवी का, मंगलवार का गणपति का, और रविवार का और किसी देवता का, और हनुमान जी का, शनिवार का, जो भी कुछ है वो भी मनुष्य के लिए है। तो वैसा ये महत्वपूर्ण मन है। और आप देखिए व्रत नाम की चीज जो है ना, वो हर धर्म के अंदर है। हमारे धर्म में बहुत विस्तार रूप में सबका वर्णन दिया है क्या किसके लिए करना है, लेकिन बाकी धर्म में भी व्रत का प्रयोजन है। मदर मेरी का व्रत है, जीसस क्राइस्ट का व्रत है, ईस्टर का व्रत है, हाँ क्या बोलते हैं, गुड फ्राइडे का व्रत है, कई प्रकार के फास्टिंग होते हैं। मदर मेरी के लिए दिसंबर में 28 दिन का फास्टिंग होता है, और भी कई कई अलग अलग क्रिश्चियन धर्मों में अलग अलग फास्टिंग बताया गया है, वो लोग फॉलो करते हैं। मुसलमान लोगों के अंदर रमज़ान ईद का फास्टिंग है, वो 30 दिन तक वो रमज़ान में अलग प्रकार से उनका सिस्टम होता है, और भी कुछ फास्टिंग होते हैं बीच बीच में। और शिया, सुन्नी, अहमदी और बहुत सारे लोगों में अलग अलग फास्टिंग होता है, क्रिश्चियन लोगों में अलग अलग ब्रांचेस है, उसमें अलग अलग फास्टिंग होता है। तो व्रत की संकल्पना सब धर्म में है। और व्रत क्यों करते हैं, व्रत क्यों करना चाहिए, उसका एक में उद्देश्य जो हमारे चतुर्मास में भी है, वो है इंद्रियों का नियमन करना। इंद्रियां अभी हाई स्पीड में भाग रही है तो उसको ब्रेक लगाना, इंद्रियों को ना बोलना अभी इसमें अभी ये नहीं करना है। जैसे हम लोग को बताते ना कि आपके जीवन में जब पढ़ने का समय होता है तब शादी वादी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए, एक ध्यान से पढ़ाई करना चाहिए, तब जाके पढ़ाई होती भी है और अच्छे अंक भी प्राप्त होते हैं, अच्छा डिग्री भी प्राप्त होता है, अच्छी विद्या प्राप्त हो जाती है ना। जो विद्यार्थी दशा में लव अफेयर में पड़ गया उसके मार्क बढ़ते कि कम होते हैं, जहाँ पर दिल लगा उसका वहाँ पर ध्यान हट गया पढ़ाई से। तो हमारे जीवन में भी ब्रह्मचारी काल बताया गया है, विद्यार्थी काल, जब आपको पढ़ना है, विद्या प्राप्त करना है, अच्छे गुण प्राप्त करना है, संस्कार प्राप्त करना है, गुरु जी की सेवा करनी है, नियम से रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसके बाद विवाह करना है, उसके बाद विवाह के अंदर भी विवाह के नियम है, ऐसा नहीं कि भाई कुत्ता बिल्ली की तरह भागो, ऐसा भी नहीं ना, उसके नियम होते हैं। उसके बाद में सब वो कर्तव्य पूरा हुआ कि वानप्रस्थ जाना है, तीर्थ यात्रा करनी है, उसके बाद में फिर संन्यास लेना है। सब धर्म का अपने अपने समय पर वर्णन दिया गया है। लेकिन समझने का इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सारे व्रत जो है ना, वो ब्रह्मचारी को लागू है, सन्यासी को लागू है, गृहस्थ को लागू है, वानप्रस्थ को भी लागू है, सबको लागू है ये। आप कोई भी भेष पहनो, आप पति पत्नी वाले हो या बिना पति पत्नी हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, फिर भी व्रत सबको है। आज के तारीख में आप चतुर्मास शुरू हो गया ना, तो हम लोग गृहस्थ भी व्रत का पालन करते हैं और सन्यासी भी करते हैं। उनके लिए अलग, हमारे लिए अलग नहीं है, हमारे लिए भी समय वही है, उनके लिए भी समय वही है। हरे कृष्णा। तो ये समझना हमको बहुत जरूरी है। जब तक आप मनुष्य हो, आपको सारे जो है ना प्रिविलेज कहते हैं उसको, सौभाग्य, वो सब आपको प्राप्त है, सबको प्राप्त है वो। मतलब संत नारद मुनि केवल नारद मुनि को अधिकार नहीं बनने का, आप बन सकते हो, आपके अंदर पोटेंशियल है, शक्ति है वो बनने की। आप बनना नहीं चाहते हो, नहीं बनते हो, वो अलग बात है, लेकिन आपको वो साधन दिया है, मनुष्य देह दिया, आपको भी दिया है, जो उनको दिया था उन्होंने उसका सार्थक कर लिया तो नारद मुनि बन गए वो, और हम लोग उधर ही हैं अब तक, क्योंकि हमने उसका लाभ नहीं लिया पूरा। तो सबसे पहला जो हमारा चतुर्मास्य का व्रत है, या मुसलमानों का रमज़ान का व्रत है, या क्रिश्चियन लोगों का मदर मेरी का व्रत है, उसमें सबका एक ही प्रिंसिपल है सबके पीछे, इंद्रियों का नियमन, हाँ, इंद्रियों का दमन, इंद्रियों को कुछ चीज़ों के लिए ना बोलना है अभी, उसको कहते हैं निषेध। और उसको बोलते हैं, और एक चीज़ है विधि, यानी कि कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी है और कुछ चीज़ें आप बाकी टाइम नहीं करते हो उस समय करना है आपको, उसको कहते हैं विधि निषेध। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डूज एंड डोंट्स। तो चतुर्मास्य का सबसे बड़ा नियम है कि शादीशुदा होते हुए भी पति और पत्नी को अलग रहना है, एक घर में रहना है लेकिन संबंध नहीं करना है, इंद्रिय भोग के बीच एक्टिविटी नहीं करना है। और दूसरा करना आपको क्या है, नियम पालन करना है भगवान के विषय में, यानी कि आप अगर 16 माला करते हो तो आपको हो सकता है एक माला एक्स्ट्रा करो, आप अधिक समय है, फ्री हो आप, ज़्यादा काम नहीं है तो 2 माला एक्स्ट्रा करो। जो संत लोग गृहस्थ नहीं होते, वो विरक्त होते हैं, वो फिर 64 माला करते हैं, 8 घंटे की जगह बैठ के जप करते हैं। दूसरा चीज़ है, जो आप भोजन रोज करते हो उसमें कमी करना है आपको, हैवी भोजन नहीं करना है, हल्का खाना खाना है। और वैसे परफेक्ट चतुर्मास का व्रत जो है उसमें ऐसा कहा गया है कि दिन में एक ही बार आपको कौन सा अच्छा समय अच्छा लगता है एक ही बार भोजन करना है और बाकी समय फलाहार करना है। आप दूध पियो, फल खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, लेकिन पकवान में जो है पका हुआ चावल दाल सब्जी रोटी जो है वो केवल एक बार खाना है। और संत लोग एक नियम पालन करते हैं, बहुत पावरफुल नियम है वो। वो क्या करते हैं, अपने हाथ पीछे लेते हैं ऐसे, हाँ, और घुटने पे बैठ जाते हैं और झुककर अपना मुंह थाली में डालकर जितना खा सकते हैं एक बार झुकने के बाद उतना ही खाना है। ऐसे कुछ लोग व्रत करते हैं। भोजन की थाली पत्तल जो भी है डाल के रखा है, पूरा सामान दे के रखा है आपको, चाहे तो मिक्स भी करके रख सकते हैं उसके अंदर, लेकिन वो हाथ पीछे रखकर घुटने में बैठकर झुककर जो भी मुंह से आप खा सकते हो, हाथ से नहीं, जितना खा सकते हो झुके हुए रहना आपको, 10 मिनट रहो, 15 मिनट रहो, जैसे भी आपकी इच्छा है, उतना जितना होता है उतना खाना है, या तो फिर हाथ से खाना है लेकिन एक ही बार खाना है। लेकिन हम लोगों ग्रस्त लोगों को इतना जमता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर खाने में कुछ हैवी आइटम होते हैं ना, मिठाइयाँ, तली हुई चीज़ें, या ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, हैवी आइटम होते हैं ना, जैसे पेस्ट्री होती है, ब्रेड होता है, सैंडविच होता है, केक होता है, ऐसा कुछ होता है ना, बहुत चीज़ें बनाती हैं आजकल, पाव भाजी, एकदम हैवी आइटम, मसालेदार, वो सब नहीं खाते, सिंपल खाना खाते हैं। इन शॉर्ट क्या खाना है, सात्विक खाना खाना है, राजसी और तमोगुणी खाना, मसालेदार, चटपटा, हैवी नहीं खाना है। और जो नॉन वेज खाते हैं उनको खास इसमें इंस्ट्रक्शन है, चतुर्मास में मांसाहार नहीं करना चाहिए, शरीर के लिए भी बहुत खराब होता है वो, क्योंकि वैसे ही पाचन क्षति कम होती है, उसमें नॉन वेज खाने से बहुत खराब हो जाती है हालत अपनी, बहुत बीमारियाँ आती है उसके अंदर, कीड़े मकोड़े पैरासाइट सब अन्न में रहते हैं, पानी खराब होता है ना, पानी बारिश का दूषित होकर आता है, और भाजीपाले में कीड़े होते हैं, इसलिए वो सावधानी से खाना चाहिए आपको इस महीने में, खुले जगह खाना चाहिए, सब जगह मक्खियाँ बैठती रहती है, ये सब सावधानी से आपको पानी उबाल के पीना चाहिए और स्वच्छ हाथ से खाना चाहिए, स्वच्छ सब्जियाँ करके खाना चाहिए, गर्म पानी या गौमूत्र में धो के खाना चाहिए, ऐसे बहुत सारा नियम है बारिश के मौसम में, क्योंकि बारिश के मौसम वैसे भी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बुखार आना होता है कि नहीं, ये हॉस्पिटल भी फुल क्यों होता है, क्योंकि बारिश का मौसम बीमारी का ही मौसम है, इसलिए व्रत बताए गए हैं। बारिश के मौसम में अगर व्रत करके अगर आप तंदुरुस्त रहे, मतलब यशस्वी हो गए, आपको बुखार नहीं आया, दस्त नहीं लगा, और तकलीफ नहीं हुई, कुछ सरदर्द नहीं हुआ, कुछ अपचन नहीं हुआ, मतलब आपने अच्छी तरह से ऋतुचर्या निभाया। हमारे डॉक्टर हैं ना, डॉक्टर आयुर्वेद के डॉक्टर हैं हमारे, उन्होंने अपने क्लिनिक के बाहर लगा के रखा है ऋतुचर्या, कौन से महीने में क्या खाना चाहिए, बारिश के महीने से महीने में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सर्दी के मौसम में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसका सब नियम है। और केवल मनुष्य के लिए, वो कुत्ते बिल्ली के लिए नहीं है। एक साथ में एक ही सब्जी का सब्जी खाना चाहिए, लेकिन सर्दियों में आप 3-4 सब्जी मिक्स करके खा सकते हो, बारिश के मौसम में आपको एक ही दाल की दाल खानी चाहिए, लेकिन सर्दियों में आप मूंग मटकी चौली सब मिक्स करके दाल खा सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो पचन करने की शक्ति होती है। मिठाइयाँ खा सकते हो, सर्दी में तो बताया गया है घी खाओ, तला हुआ चीज़ खाओ, मिठाइयाँ खाओ, क्योंकि तो पचन शक्ति अच्छी होती है और सेहत कमाने के लिए वो सब मौसम अच्छा होता है। और कमाई हुई सेहत जो है सर्दियों में वो बारिश के मौसम में बनाए रखनी चाहिए पथ्य पालन करके, ये हमारा शास्त्र है। केवल भक्ति भक्ति नहीं है, उसमें आरोग्य भी सम्मिलित किया गया है। तो चतुर्मास में सबसे बड़ा प्रिंसिपल है ब्रह्मचर्य, दूसरा प्रिंसिपल है व्रत, इसलिए एकादशी आती है, फिर कुछ लोग 16 सोमवार करते हैं, कुछ लोग 16 मंगलवार करते हैं, कुछ शुक्रवार भी करते हैं, सब आते हैं ना व्रत, नाग पंचमी ये सब आता है ना, गणपति हरतालिका, कितने व्रत आते हैं इसके अंदर। फिर नवरात्रि आएगी एक दिन से नौ नवमी तक, फिर दशहरा आएगा, फिर दिवाली आएगी, कितने सारे व्रत हैं, फिर कार्तिक महीने में तो कितने व्रतों की महिमा है पूरी। और ऐसे कहा गया है कि इन दोनों में जो व्रत करते हैं वो सबसे अधिक भगवान को बहुत जल्दी प्राप्त करते हैं। भगवान के पास जल्दी पहुंचने का ये फास्ट ट्रेन है, इसका लाभ उठा के हर व्यक्ति को व्रत करके भगवान की प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए। और बहुत सारी कॉमन चीजें बताई गई है, वो ये है कि चतुर्मास में दिन में कम से कम एक बार भगवान का मंदिर में दर्शन करना चाहिए, भगवान को 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। होता ना मंदिर में देखो परिक्रमा की जगह होती है, हर महीने दे देवी के मंदिर में होती है, गणपति के मंदिर में होती है, कृष्ण के मंदिर में होती है, विष्णु के मंदिर में होती है, एक परिक्रमा करने का जगह होता है गोल घूमने का, वो 3 बार कम से कम दक्षिणा करना चाहिए। इन 4 महीनों में कम से कम अनेक मतलब रेगुलरली आपको हो सके उतना धाम में जाना चाहिए, तीर्थ स्थान में जाना चाहिए। आप बोलेंगे कहाँ पर है नज़दीक में, नज़दीक से नज़दीक कौन सा है, बाण गंगा है मुंबई में, वो भी एक बड़ा तीर्थ है, वहाँ पर लक्ष्मण ने बाण मारकर गंगा जी को प्रकट किया था, प्रभु रामचंद्र को जप करना था इसलिए आचमन करने के लिए शुद्ध पानी पैदा किया बाण मारकर। आज भी वो बाण की जगह पर से कंटिन्यूअस गंगा जल बह रहा है, आप जाकर देख सकते हो, पी भी सकते हो, प्योरेस्ट वाटर पत्थर से निकल रहा है, बोलो कहाँ से आ रहा है पता नहीं। प्रभु रामचंद्र कब आए थे, त्रेता युग में आए थे, उसके बाद कृष्ण भगवान का युग भी खत्म हो गया, उसमें कलयुग भी चालू हो गया, अभी भी चल रहे हैं। और थोड़ा दूर जाना है तो आपको नासिक जा सकते हैं, केवल 200 किलोमीटर है, 180 किलोमीटर, और गोदावरी बह रही है, वहाँ पर भगवान राम का वनवास का समय बीता हुआ है। और समय है तो फिर जयपुर है, वृंदावन है, मथुरा है, हाँ जगन्नाथपुरी है, बद्रीनाथ है, सब जगह जा सकते हैं आप। वहाँ जाकर आपको क्या करना है, कुछ दिन निवास करना है, भजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भगवान का पूजन करना है, दान धर्म करना है, नदी में स्नान करना है, और रोज से अधिक जप करना है। क्योंकि आप जब जा रहे हो यहाँ से सब कुछ छोड़ के जा रहे हो ना, छुट्टी लेके जा रहे हो, नौकरी भी बंद छोड़ के जा रहे हो, घर भी लॉक करके जा रहे हो, तो आपको करना क्या है, केवल भगवान का ही कार्य करना है, और कुछ करना, बिजनेस करना नहीं, वहाँ पर जाके बीड बैग बेचना है, उधर माला बेचनी है, या प्रसाद बेचना है, कोई पैसा बनाना है, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ छोड़ के वहाँ पर केवल भगवान के लिए जाना है, और फिर दिन रात एक ही शेड्यूल है आपका, जल्दी उठ के नदी में स्नान करना है, जप करना है, फिर मंदिर जाना है, फिर सेवा करनी है, फिर कथा सुननी है, फिर सेवा करनी है, फिर कथा सुननी है, फिर वो आश्रम में झाड़ लोड करनी है, फिर वापस पढ़ना है, फिर वापस ध्यान करना है, कोई पारायण चल रहा है वहाँ जाके बैठना है, कहीं कीर्तन सप्ताह चल रहा है वहाँ जाके बैठ के कीर्तन करना है, गाना है, संतों की कथा में बैठकर संतों को उपदेश सुनना है, सत्संग करना है, गाय की सेवा करनी है, यही काम करना है, फिर आके अपना अपना यहाँ पर काम करना है, और फिर वो बेसिक नियम पालन करने हैं, घर के पास जो मंदिर है वहाँ जाना है। तो क्या क्या बताया, दान धर्म बताया, तीर्थ स्थान की यात्रा बताई, नदी का स्नान बताया, और रोज जहां पर भी आप रह रहे हो, मुंबई रह रहे हो कि धाम में रह रहे हो, रोज आपको नियमित रूप से जप करना है, और जितना भी जप करना है वो सुबह अगर सूर्योदय के पहले करेंगे तो बहुत अच्छा है, बाकी दिन में आप शाम तक अपना 15वीं 16वीं है ना धकाधक स्ट्रगल चालू रहता है, अपना नींद तक, नींद होने तक अभी भी एक बाकी है, अभी खींचना है एक माला, वो काम ये 4 महीने में नहीं करना है, वो सुबह उठ के ही होना चाहिए, सब कुछ भगवान का कर्तव्य पूरा करके ही काम पे आना चाहिए, दिन को एडजस्ट करना चाहिए उसके लिए, रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना है, जल्दी से फिनिश करके बाकी सारे काम बाद में करना है। हम लोग कैसे करते हैं, देर से उठते हैं, उठते ही बेल चालू, दूध वाला, सब्जी वाला, पेपर वाला, कपड़ा डब्बा बनाना है, काम पे भागना है, फिर ट्रेन में थोड़ा जब कर लेते हैं, बस में थोड़ा जब कर लेते हैं, फिर वॉकिंग में कर लेते हैं, थोड़ा कर लेते हैं, फिर थोड़ा बीच में कर लेते हैं, और फिर रात तक अपना है ही 16 पूरा होता ही नहीं, इतना बड़ा नंबर है 16, एक के ऊपर 6 कैसा पूरा होगा ऐसा लगता है, लेकिन जल्दी उठ गए तो सुबह 8 बजे के पहले फिनिश, उसके बाद में सब काम करने के लिए फ्री आप। लेकिन वो लोग शाम पे भी आके थोड़ा जब करते हैं, फिर एक्स्ट्रा हाथ पाँव धो लिया, काम पे आ गए तो बैठ के भगवान के सामने आधा घंटा जप कर लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, फिर वापस खाना खा के बैठते फैमिली के साथ में। इंद्रिय भोग के काम इस महीने में कम करने हैं, फॉर एग्जांपल कौन से बताइए, समझो आप मांस नहीं खाते हो, आप व्यभिचार नहीं करते हो, आप जुआ नहीं खेलते हो, आप मांसाहार नहीं करते हो, आप चोरी नहीं करते हो, आप झूठ नहीं बोलते हो, फिर भी ऐसे कौन से इंद्रिय भोग के काम आप करते हो रोज बताओ, मोबाइल देखते हो, मोबाइल देखते हो, व्हाट्सएप देखते हो क्या, उसके अंदर फिल्म देखते हो, वीडियो देखते हो, क्लिप देखते हो, तो टाइम पास के जोक पढ़ते हो, है ना, वो क्या है, भोगी तो है वो, उसके बिना दिन एक माला उसके बिना पूरी नहीं होती है, मालूम है कि एक माला के बीच तीन बार देखना पड़ता है, नियम है अपना, एक माला में तीन बार तो व्हाट्सएप देखना ही है, 16 माला में 48 टाइम देखना है ना, बीच में कोई एक्स्ट्रा आया मैसेज इंपॉर्टेंट तो उसको देखना ही है, वो 3+ के ऊपर है वो, है ना। इतना अभी ना, इतना भक्तों के लाइफ में भी इतना ये मोबाइल घुस गया ना, सब है, गरीब से गरीब आदमी को मालूम है वो फेसबुक क्या होता है, ट्विटर क्या होता है, व्हाट्सएप क्या होता है, मैसेज क्या होता है, वीडियो फिल्म क्या होती है, क्या पब्लिक को मालूम है। अरे वो भिखारी होता है ना, भिखारी जो घर में ठॉक ठॉक करने को आता है ना, गवंडी, वो भी देखता है, बीच में उसका ब्रेक होता है 2 से 3, उसमें भी वो फिल्म देखता है, उसके अंदर पिक्चर देखता है, हमारा वॉचमैन दिन रात पिक्चर देखते रहते हैं, उसको मालूम है लोड कैसे करने का, कैंसिल कैसे करने, नया कौन सा डालने का, कहाँ जाके डालने का, कितना में डलवाता है, क्या सब मालूम है उसको, पेन ड्राइव क्या है, पेन ड्राइव में कितनी कैपेसिटी होती है, कितना GB का मूवी आता है, सब मालूम है, पढ़ा लिखा अंगूठा छाप, लेकिन ये सब मालूम है उसको। इतना लोगों के जीवन में घुस गया है, वही आज का भोग है मेन। शादीशुदा नहीं भी होगा ना तो सारा गंदा चीज उसमें देख लेता है वो, कैसा होता है आदमी औरत के बीच में सब देख लेता है। आपको ब्रह्मचारी रहने देगा ही नहीं, वो इतना आपका जिंदगी खराब कर देगा। अभी अभी तो अभी शादी के बहुत समय बाकी है आपको, लेकिन फिर भी उसके पहले ही सब आपको दिखा देगा दुनिया क्या है, इतना गंदगी उसके अंदर है। तो अगर आपको सच में कुछ व्रत करना है तो आप लोग नियम करो कि जब होने तक मोबाइल बंद, उसके बाद में मोबाइल देखना केवल काम के लिए देखना है, टाइम पास के लिए, बता रोज का नियम है मेरा, सोने के पहले 2-3 मेरे को वीडियो देखना ही है, ये सब बंद करना है इस महीने में, सारा मन जो भगवान के अंदर फोकस करो, देखना ही है तो भगवान के कुछ फिल्म देखो, भगवान का कुछ मंत्र सुनो। मैंने कल ही अभी 5 प्रकार के कवच डाउनलोड करके रखे, वराह कवच, नरसिंह कवच, हनुमान चालीसा, नारायण कवच, नरसिंह करावलंब स्तोत्र, ऐसे लंबे लंबे सुदर्शन स्तोत्र, सुदर्शन महामंत्र जप स्तोत्र, ऐसे कई घंटों के मैंने डाउनलोड करके रखे हैं। अभी वो सुबह उठते हैं हम लोग घर में चालू हो जाते हैं, हम लोग तैयार हो रहे हैं कुछ कर रहे हैं, वो चलते रहता है बेटी के पास मेरे पास, उसका ध्यान से सुनते हैं जब हम लोग तैयारी हो रही है। उसके बदले में फिल्म के गाने सुन सकते हैं ना, लेकिन इस महीने में उसको चेंज कर दिया है, पहले भी फिल्म के गाने सुनते नहीं थे, लेकिन अभी खास करके जब फ्री है, हम लोग कपड़े पहन रहे हैं, वो नाश्ता कर रहे हैं, तभी वो चल रहा है, घर के वातावरण को शुद्ध कर रहा है, आपको भी शुद्ध कर रहा है, आपके कान को भी शुद्ध कर रहा है, आपके मन को भी शुद्ध कर रहा है, वो गंदे चीजें सुनने के बदले में भगवान की मंत्र सुनाई पड़ रहे हैं। उसमें कहते हैं, उस श्लोकों में क्या कहते हैं, ये जो श्लोक सुनेगा वो रोगों पर विजय पाएगा, उसके मन के विकार नष्ट हो जाएंगे, उसके शत्रु का नाश हो जाएगा, उसको यश प्राप्त होगा, वो राजा बनेगा, उसको भगवान की प्राप्ति होगी, उसको जीवन के अंत में भगवत धाम में प्रवेश मिलेगा, सब ऐसे ही फलश्रुति बोलते हैं उसको, क्या क्या सुनकर क्या लाभ होगा उसका वर्णन भी उसके अंदर आता है। और अधिकतर शंकर जी पार्वती को बता रहे हैं सारे कवच का वर्णन, शिव पुराण में पार्वती पूछती है और शंकर जी उसको हरेक भगवान के अलग अलग कवचों का वर्णन सुनाते हैं। तो इति श्रेणों में देवी, बार बार बीच में देवी का नाम आता है, देवी पूछ रही है और शंकर जी सुना रहे हैं उसको। बाकी सारे व्रत भी बहुत सारे ऐसे ही है जो शंकर जी अपनी पत्नी को सुना रहे हैं, ये सब हमारे लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि क्या नहीं करना चाहिए, जो आम तौर पर आपके हिसाब में वो पाप के खाते में नहीं आता है, मोबाइल देखना है ना, वो भी आपको इस महीने में नहीं करना है, ताकि आपका मन शुद्ध रहे। ये सब व्रत क्यों करते हैं, व्रत का पर्पज क्या है, व्रत की व्याख्या क्या है, व्रत की व्याख्या है, व्रत का मतलब क्या है कि कुछ असुविधा आप स्वीकार कर रहे हो। जैसे आपको 7 बजे तक सोना अच्छा लगता है, लेकिन आप 7 बजे तक सोने का सुख छोड़ के 5 बजे ही उठ रहे हैं, है ना, मतलब एक चीज है जो आपको सुख आपका कम हो रहा है उसके अंदर, लेकिन स्वेच्छा से आप वो असुविधा स्वीकार कर रहे हो, है ना, मन से और निश्चय से कि मुझे करना है, मैं अभी 7 बजे नहीं उठूंगा, मैं अभी 5 बजे उठ जाऊंगा। तो एक तो वो असुविधा है, दूसरी स्वेच्छा है, मतलब इच्छा से जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, और तीसरा वो भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए इच्छा से स्वीकार की गई असुविधा, इसको व्रत कहते हैं। तो भगवान इसमें इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे मुझे शरीर कमाना है, वजन 50 किलो कम करना है तो मैं सुबह उठ रहा हूँ, तो वो व्रत नहीं होता है। वो मैं विरार से चर्च गेट तक लटकते हुए काम पे जाता हूँ, कितना बड़ा व्रत है मेरा उसको व्रत नहीं बोल सकते। वो तो अपने पेट पालने के लिए आप मेहनत कर रहे हो। कल बोलेंगे घर बैठ के आपको पगार मिलेगा तो आप बिल्कुल नहीं जाएंगे विरार का मुंह देखने के लिए, है ना। मतलब आप फिर ज़बरदस्ती से आप जा रहे हो, वो क्या करना है, बच्चों को पालना है, बीवी को संभालना है, तो लटकना ही है रोज़ आपको। लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है तो आप लोग कितना आनंद बना, खुशियाँ बनाते, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, हाँ 1 अगस्त, खुशियाँ ही खुशियाँ मनाते हम लोग। बॉस आज विरार का मुंह देखने की जरूरत नहीं, ट्रेन का आवाज़ भी सुनना नहीं मुझे आज तो वो व्रत नहीं है। कष्ट जरूर है, असुविधा जरूर है, लेकिन वो भगवान के लिए और स्वेच्छा से नहीं किया गया है। तो व्रत वो होता है जब आप स्वेच्छा से करते हो। आज एकादशी है, आज मैं अनाज नहीं खाऊंगा, स्वेच्छा से मैं, अच्छा लगेगा मुझे पराठा खाने के लिए लेकिन नहीं खाऊंगा आज, मैं आज एकादशी है, कल खाऊंगा, भूख लग रही है फिर भी नहीं खाऊंगा, कल खाऊंगा। इच्छा से जो करते हैं ना वो भगवान के लिए, उसको व्रत कहते हैं। तो व्रत भगवान के आनंद के लिए ही किया जाता है। और ये व्रत करने का समय ये अधिक अच्छा है, क्योंकि जब समझो अभी आप बोट में बैठ के जा रहे हो, हाँ समुद्र में, समझो हवा ऐसे पूर्व दिशा में बह रही है, तो आपकी बोट फास्ट कौन सी दिशा में जाएगी बोलो, पश्चिम में जाएगी कि पूर्व में जाएगी? हवा बह रही है पूर्व की तरफ जोर से, तो आपको आसान कहाँ जाना होगा, पूर्व में। तो वो शेड कहाँ पर चेंज करते हैं, वो ऐसा बदली करते हैं ना दिशा, वो पूर्व की ओर करते हैं। मतलब क्या, बहते हुए हवा का झोंके का वो लाभ लेते हैं और वैसे चलते हैं। आप चाहते हुए भी हवा के झोंके के उल्टा जा सकते हो क्या? कितना भी कोशिश करो, कितना भी इंजन चलाओ, मुश्किल है आपके लिए। तो चतुर्मास्य मनुष्य के जीवन का एक अनुकूल हवा का झोंका है, ये झोंका भगवान की ओर जा रहा है। उस झोंके का लाभ लेने के लिए आप व्रत कर रहे हो, लाभ लेके वो हवा का लाभ रहे हो, भगवान की दिशा में जल्दी जल्दी पहुंचने का प्रयास कर रहे हो। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ना कभी भी अच्छे समय का इंतजार करता है कुछ चीज करने के लिए, है ना। इसको मालूम है कि अप्रैल के महीने में एग्जाम आती है, तो टाइम पास सब छोड़ के पढ़ाई करना है, ये महीने में टीवी भी देखना नहीं है, टाइम पास नहीं करना है, सीरियल देखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, टीवी बंद, केबल कनेक्शन तोड़ देते हैं, बोले ये महीने में पढ़ाई करना है क्योंकि अगले महीने में एग्जाम है। उसमें अगर अच्छा मार्क मिलेगा ना तो छुट्टी में टीवी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना काम हो गया अभी। ऐसा उस तरह से भगवान का भक्त जो होता है वो देखता है कि एकादशी का दिन है, बहुत फेवरेबल है, अनुकूल है, व्रत कर लो भगवान के लिए, जल्दी जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अरे सुबह का समय पावरफुल है, जल्दी उठ के भगवान का जप करेगा वो, चतुर्मास से आ रहा तो उसका लाभ लेगा, सब व्रत जितने भी है पालन करेगा, एक जनरल व्रत का व्रत करेगा और स्पेशल व्रत जो है दाना है किधर धाम में जाना है वो भी कर लेगा, पूरा प्लानिंग कर लेगा वो। जैसे हमारा कार्तिक महीने का मायापुर का यात्रा फिक्स है, उसके लिए वृंदावन जाना है, वृंदावन से यहाँ से कार्तिक में मायापुर जाना है, फिर वृंदावन आना है और फिर कार्तिक के व्रत समाप्त होते ही लौट के आना है। तो धाम की यात्रा हो गई, नदी का स्नान हो गया, कथा प्रवचन सत्संग प्रसाद ग्रहण भक्तों के बीच में जप सब हो गया, अभी भी चालू है, सब व्रत करेंगे अच्छी तरह से, आप लोग भी करो। ये आज बताने का प्रयोजन क्या है, क्योंकि अभी 2 ही दिन हो गए ना, रविवार को शुरू हुआ था, अभी 4 महीने -2 दिन बाकी है, 120 में से 2 ही दिन गए, 118 दिन बाकी है आपके लिए। तो आप मनुष्य होकर बहुत निश्चय कर सकते हो। जो लोग जप नहीं कर रहे हैं वो जप करने का आरंभ करो, जो लोग मास अभी तक छोड़े नहीं हो मास छोड़ दो, जो लोग कुछ जप कर रहे हैं तो जप ज़्यादा करने का प्रयास करो, थोड़ा टाइम पास जो होता है ना वो सोच के बंद करो उसको। जो पढ़ाई नहीं करते भगवान की किताब का, वो पढ़ाई करने का चालू करो कि भाई ठीक है ये 4 महीने में रोज मैं भगवद गीता का 1 श्लोक पढ़ूंगा। पढ़ सकते ना, 5 मिनट के लिए क्या कर सकते हैं, 3-3 घंटा मोबाइल में बर्बाद करते हैं, 1 श्लोक पढ़ने के लिए 3 मिनट लगते हैं, और वो भी बेचारा मोबाइल में ही अवेलेबल होता है आजकल, कोई लाइब्रेरी में घर जाके किताब नहीं लाया बोलने की जरूरत नहीं, पॉकेट डायरी खोला, पॉकेट के क्लिक किया तो भगवद गीता, फिर कौन सा अध्याय सुनना है, क्या करना है, सब है उसके अंदर, हाथ में है पूरा। और भजन गाना है तो भी वो भजन संग्रह भी उसके अंदर है, बंगाली में, संस्कृत में, गुजराती में, मराठी में, सब भजन संग्रह हाथ में मिलते हैं। आज तिथि कौन सा है तो पंचांग का ऐप भी आपके हाथ में है, खोलेगे तो आज तिथि कौन सा है, वार कौन सा है, कौन सा समय अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा राहु काल, सब मालूम पड़ता है उसके अंदर। मतलब साधन मिला है आपको अच्छा, ऐसा नहीं कि वो खराब ही चीज़ है, लेकिन उसमें क्या जमा किया आप वो देखो, उसमें अंदर क्या डाल के रखा है आपने, सब चीज़ अवेलेबल है आपको, उसका लाभ ले लिए। लेकिन भक्त लोग ऐसे बुद्धिमान होते हैं ना, वो सारे चीज़ों का लाभ ना भगवान की भक्ति के लिए ही करते हैं। नहीं तो बाकी लोग उसमें पिक्चर देखते हैं, लेटेस्ट मूवीज़, गूगल प्ले स्टोर, इसमें क्या दिया है, कौन सा गेम आ रहा है, कौन सा नया गेम, कौन सा पुराना गेम, कौन सा वीडियो गेम, कौन सा ऑडियो गेम, वो देखते रहते हैं। अब भक्त लोग कौन सा वीडियो फिल्म भगवान का, गुरु महाराज का लेक्चर अभी यूट्यूब में आया है, उसको डाउनलोड कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी वही है, आप उसका इस्तेमाल भगवान के लिए कर रहे हो, कुछ लोग इंद्रिय भोग के लिए कर रहे हैं। लेकिन सबसे थंब रूल 4 महीने का ये है, इंद्रियों को रोकना है। इंद्रिया कैसे ना, तो एक रथ है और 5 घोड़े उसको लो, और 5 घोड़े का लगाम है और वो सारथी के हाथ में। लेकिन आप सोच लो कि वो 5 घोड़े 5 दिशा में भाग रहे हैं, समझो एक यहां भाग रहा है, एक वहां भाग रहा है, एक आगे भाग रहा है, एक लेफ्ट में भाग रहा है, पीछे, एक को पीछे जाना है, तो रथ कहां रहेगा? रथ पता नहीं उधर ही रहेगा, उधर के उधर ही, ऐसा इधर हले, ऐसा ऐसा हिलेगा, बस इधर हिलेगा, इधर हिलेगा, इधर हिलेगा, इधर हिलेगा, लेकिन हिलेगा और रहेगा उधर ही। लेकिन रथ किसके लिए होता है? रथ आगे जाने के लिए होता है, इसलिए उसे पहिए होते हैं। आपके घर को पहिए होते क्या? तो घर का पर्पज क्या है? उधर रहना है उसको, घर को थोड़ी पहिए लगाए आपने। पहिए किसको लगाते हैं? गाड़ी को लगाते हैं, बैलगाड़ी को लगाते हैं। पर्पज क्या है उसका? वो पहिए का मतलब ही है उसको कहीं जाना है, उस चीज को कहीं लेके जाना है आपको। तो वो जब घोड़े 4-5 दिशा में जाते हैं तो फिर वो पहिए लगा के फायदा क्या? पहिए भी उधर, रथ भी उधर, सारथी भी उधर और घोड़े भी उधर। तो क्या करता सारथी? फिर वो लगाम खींचता है उसको और कंट्रोल में लेके आता है उसको और फिर चाबुक लगाता है, फिर सारे घोड़े एक दिशा में चलने लगते हैं, फिर खड़खड़ खड़ 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 फिर पहिए भी चालू हो जाते हैं और रथ को जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा देते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट है? वो 5 घोड़े जो है ना, उसको एक दिशा में कंट्रोल करके चलाना है आपको। और राइट घोड़ा बोलेगा मैं 10 किलोमीटर से भागेगा, तू कितने में भागेगा? नहीं मैं बे तो 20 में भागने वाला हूं, ऐसा चलेगा क्या? सबको एक गति में जाना पड़ेगा, तब जाके वो रथ सबको लेकर आगे जाएगा। तो एक 10 वाला, एक 20 वाला, एक 50 वाला, तो क्या होगा? रथ कहीं भी नहीं जाएगा। तो सारथी का काम क्या है? वो 5 घोड़ों को कंट्रोल करके, एक एक को थोड़ा टिचकी मार के एक गति में भगाएगा। भले वो 10 से आगे शुरुआत भगाएगा, उन्हें 20 में करेगा, उन्हें 30 में, 50 में भी भगा सकता है, लेकिन एक साथ में भगाएगा वो, तब जाकर इतने इतने घंटे में उसको वहां पहुंचने के लिए सुविधा हो जाएगी। वैसे हमारी इंद्रियां हैं, कान है, नाक है, जीभ है, आंखें हैं, इधर उधर देख रही है क्या कर रहे हैं, आंख कान में कुछ सुनाई पड़ रहा है, आंख में कुछ दिखाई पड़ रहा है, नाक में कुछ सूंघना स्मेल आ रही है। तो वो मन जो होता है ना, मन वो सारथी की तरह होता है, वो इन 5 इंद्रियों को एक दिशा में रखता है। देखना भगवान को, सुनना भगवान को, खाना भगवान का प्रसाद, सूंघना भगवान का फूल, यही करना है आपको। चलो पांव को बोलेगा मन चल मंदिर की ओर चल, हाथ को बोलेगा चल हाथ जोड़, सर को बोलेगा चल झुका दे सर, मतलब एक ही कार्य करने को मन उसको बोलेगा, मन उसको कंट्रोल करेगा। ये इधर उधर खाने का नहीं, एकादशी के दिन खाली घर पे खाने का प्रसाद, 4 महीने मांसाहार करने का नहीं, चपोटी में भेलपुरी खाने का नहीं, घर में जो सामान्य अन्न होता है भगवान को भोग लगा के खाना है। ये मन है जो निश्चय कर चुका है, और मन निश्चय कैसे कर सकता है? वो सत्संग करता है, और सत्संग में उसको शक्ति प्राप्त होती है, नहीं मुझे करना है। जैसे आप लोग अभी सुन रहे हो सकता है कम अधिक मात्रा में आपको प्रेरणा मिलती होगी, लेकिन कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर मिलती होगी, उम्मीद है मेरी, ऐसी प्रार्थना भी है, उम्मीद भी है कि मेरे बोलने का 1 घंटे का कुछ ना कुछ लाभ होगा आपको। कम से कम नॉलेज तो मिलेगा आपको, बाद में ये नहीं बोल सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था चतुर्मास शुरू कब हुआ और एंड कब हुआ, किसी ने बोला ही नहीं मुझे, और भक्ति विधान में इतनी कथा होती है उसमें भी कहीं बोला नहीं। ऐसे आप बोल सकते ना। तो आज के मंगलवार के दिन 11 जुलाई को रिकॉर्डिंग भी हो चुका है कि आपको हमने ये बता दिया है, और आप जाके अपने दोस्तों को जो नहीं आ पाए उनको बता सकते हो। थोड़ा सा पूरा लेक्चर तो देना मुमकिन नहीं आपको शायद, लेकिन थोड़ा सा बता सकते हो कि क्या क्या करना है आपको, मोटी मोटी बातें, ठीक है? तो अभी हम एंड में वो मोटी मोटी बातें रिवाइज करेंगे। चतुर्मास से 4 महीने का समय है, मनुष्य जीवन में भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। उसमें सबसे बड़ा प्रधान चीज है ब्रह्मचर्य का पालन, दूसरी चीज है व्रत करने का पालन, तीसरी चीज है इंद्रिय भोगों को कम करने का नियम, चौथी चीज है धाम में, तीर्थ में जाकर नदी में स्नान करना, दान धर्म करना, पुण्य करना, गलत काम नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, ऐसे प्रकार के आपको 4 महीने रहना है। और ये अनुकूल हवा के झोंके में जल्द से जल्द भगवान के पास जाने का और हृदय को, मन को, आत्मा को शुद्ध करने का आपको प्रयास करना है। इतना तो याद रहेगा ना। उसके लिए MBBS होने की जरूरत नहीं है, 3-4 बार रिवाइज कर चुका हूं मैं, तो आप लोग करिए उसको और जीवन को धन्य बनाइए। देखियो अल्टीमेटली आप अगर व्रत नहीं करेंगे नुकसान किसका है, आपका ही नुकसान है। और बाय द वे ये बताना मैं जरूर बताऊंगा जाने के पहले, जो पाप कोई लोग बाकी समय करते हैं वो अनजाने में चतुर्मास के समय करेंगे तो उसके कई गुना फटके मिलेंगे आपको। समझा, आप चोरी कर रहे हो कई गांव में, शायद पकड़े नहीं जाएंगे, पुलिस चौकी के सामने चोरी करेंगे तो ज्यादा फटके पड़ेंगे ना। क्या समझता क्या, तो मेरे आंखों के सामने चोरी करता है पुलिस चौकी के सामने, चल इसको अंदर ले लो, 4 फटके और लगा उसको, इसकी हिम्मत इतनी पुलिस चौकी के सामने चोरी करने की, है ना? ऐसा होता है ना कि नहीं होता है दुनिया में? तो वैसे ही है ये भी। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो ज्ञान ही नहीं था, तो जो बच्चा है उसको ज्ञान ही नहीं है, वो जाके तवे पर स्टूल समझ के बैठ गया तो आग क्या बोलेगी, अरे मत जला रहे उसको, तो बच्चा है बेचारा, वो कैसे जलाने का, उसको कोई नॉलेज ही नहीं है। उसको बच्चा खेलते खेलते गया भक्ति विधान में, आया प्रोग्राम में और सॉकेट में डाला उंगली उसने, और उसने बटन लगा कर उन्होंने भगवान का दीपक जला के रखा था लाइट, उसने उसमें डाल दिया उंगली, तो बिजली क्या बोलेगी, अरे रे उसको शॉक मत दे रे, बच्चा है रे वो, उसको क्या नॉलेज है उसको। ऐसा होता है क्या, बच्चा 5वें माले से फिसल के गिर गया तो वो ग्रेविटी क्या बोलेगी, अरे बच्चे को हार्ड मत तोड़ो उसका, क्योंकि बच्चा है उसको नॉलेज ही नहीं है, बड़ा आदमी का तोड़ सकते हो आप गिरने पर, नहीं गिरने पर सबकी हड्डी टूटती है, बच्चे की भी टूटती है बड़े की भी टूटती है। आग में हाथ डालने पर सबका हाथ जलता है, बच्चे का भी जलता है, जिनको जानकारी है उसका भी जलता है, जिसको अनजान है वो भी जलता है, अंधे का भी जलता है और आंख वाले का भी जलता है कि नहीं? वैसे आप बोलेंगे मुझे चतुर्मास का पता ही नहीं है इसलिए मैंने दारू पी लिया, बोले ठीक है तैयार रहो फिर अभी लाइन लगाओ नंबर आएगा आपका जल्दी से जल्दी। तो अनजान होना ये मनुष्य जीवन का कोई एक्सक्यूज नहीं है, मनुष्य का जीवन ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। आप नहीं ज्ञान प्राप्त करोगे कुत्ता ज्ञान प्राप्त करेगा ज्ञान, उसके लिए गीता लिखी गई क्या? तो अनजान होना ये इसमें अलाउड ही नहीं है। वो एक घर में एक बालक था, वो चोरी करता था, माँ बाप भी चोर थे, तो बच्चा भी चोरी करते करते बड़ा हो गया, पूरा परवरिश ट्रेनिंग सब मिला उसको। तो एक दिन वो छोटा था, मतलब थोड़ा सा 10 साल का था, तो एक कुछ चोरी करके लेके आया बड़ा ऐसा, तो माँ ने बहुत हवा किया उसका, वाह क्या लड़का है आपने, देखो अपने से भी आगे चला गया, हम तो इतना देर तक नहीं कर पाते, तो बचपन में सीख गया सब, वो तारीफ हो गया तो उसको और प्रेरणा मिली, तो बड़ा चोर बन गया वो। एक दिन उसको चोरी में फांसी की शिक्षा हो गई। तब मालूम है आपको, फांसी के होने के पहले पूछते हैं, बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, बोलते ना कुछ है क्या आखिरी ख्वाहिश, किसी को मिलना है आपको, बोले हाँ मेरे मेरे माँ को मिलना है, मुझे माँ को मिलकर भी फांसी चला दो, तो ठीक है तो सिंपल है पूरा कर सकते हैं। तो उसको पुलिस लोग माँ के पास लेके जाते हैं, तो उसको लगा कि माँ का दंडवत करके प्रणाम करके आशीर्वाद लेना है उसको जाने के पहले, तो वो जाके माँ का कान पूरा काट के निकाल लेता है बाहर दांत से, पूरा कान ऐसा इधर से निकाल के हाथ में, कान ही नहीं इधर, पूरा रक्त बम्बाड़ हो गया पूरा। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है, अरे क्या कर रहा है तू, बोलते माँ जब उस दिन बालकपन में जब वो बड़ा चोरी करके आया था तब तू मुझे डांटती ना, तो आज मैं फांसी पर लटकने के समय नहीं आता मेरा। माँ भी अज्ञानी बेचारा और बच्चा भी अज्ञानी, उनको पता ही नहीं है कि करना वो ये बुरा सब होता है। चोर को क्या लगता है मन में, क्या दुनिया के जेब में जो पैसा है वो सब हमारा होना चाहिए। माँ ने भी वही बोला है, पिताजी ने भी बोला है, भाई भी वही बोलता है कि सब दुनिया के लोगों के जेब में जितना पैसा है वो सब हमारा होना चाहिए, हमारा अधिकार है उस पर, ऐसा ट्रेनिंग रहता है उनका, इसलिए उनको चोरी करने में कोई खराब लगता नहीं है। बोले ये हमारा अधिकार का पैसा इनके जेब में क्यों है। रावण को क्या लगता था कि दुनिया के हर औरत सुंदर जो है मेरी होनी चाहिए, उसकी पत्नी क्यों है, राम की क्यों है, वो मेरी होनी चाहिए, चलो छीन लो उसको। उसको पता ही नहीं है कि खराब चीज है ये, पता होने पर भी उसको मंजूर नहीं है वो। तो अंजाम क्या हुआ उसका, सब पत्नी अपनी नहीं होती है, सब औरतें अपनी पत्नी नहीं होती, एक ही हमारी पत्नी हो सकती है ना। और उसके बाद में फटका भी गिरता है, बहुत लोगों को लेके आया वो, लेकिन आखिर में एक गलत आदमी का पत्नी को लेके आया तो पूरा खानदान के साथ नष्ट हो गया वो, है ना। तो वो कह सकता है क्या, अरे मैंने पढ़ा नहीं था किताब में कि राम की पत्नी को लेना नहीं था, ऐसा किधर पढ़ा नहीं था कि राम की पत्नी को हाथ मत लगाओ बाकी सबको हाथ लगाओ। वो कोई अज्ञान का कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसका फटका लेना ही है, उसका दंड भुगत नहीं है। उसी प्रकार से अगर आपको पता नहीं है चतुर्मास का ऐसा वैसा, तो उस उन महीनों में किया हुआ पाप का दुगुना चौगुना 4 गुना आपको दंड भुगतना ही पड़ेगा। और कहीं आपको एक्सक्यूज नहीं मिलेगा उसको, सॉरी सर माफ करो पता ही नहीं था हमको। बोला ठीक है पता नहीं तो उसका दंड भोगो, आगे मत करो, आगे दंड नहीं देंगे आपको। लेकिन पिछला वाला जो है, हाँ बोले सर अपने पता ही नहीं, तो वृंदावन में था वो बिजली का बल्ब भरा ही नहीं सर। नहीं पेनल्टी लग के आ गया है, इसको पहले भरो आगे ध्यान रखो। नहीं नहीं सर मैं हर महीने भरता हूँ, लेकिन ये मैंने वृंदावन गया था तो बिल रह गया, डेट निकल गया, तो अभी कम से कम मेरा डिस्काउंट दे दो मेरे को। नहीं नहीं जो नियम है वो आपको पालन करना पड़ेगा। सोसाइटी में मेरे काटे 400 रुपये। बोले इतने साल से कभी मैंने मेरा मेंटेनेंस का फी मिस नहीं किया, तो क्या हुआ ये मिस किया तो 425 रुपये लागू हो गया आपको, वो भरना है आपको। संत बन के घूमने की जरूरत नहीं है, अभी मिस्टेक किया ना भरो, अगली बार ध्यान रखना 30 तारीख के पहले पैसा आना चाहिए। किसी को एक्सक्यूज नहीं है, संत को भी एक्सक्यूज नहीं है और दुश्मन को भी एक्सक्यूज नहीं है और राक्षस को भी नहीं है। नियम पालन सृष्टि का नियम सबके लिए होता है, उसी तरह से पता कर लो और पालन करो। जान के अनजान मत बनो और अनजान बनकर भी अनजान मत बनो। मनुष्य जीवन ज्ञान प्राप्त करने के लिए है, प्राप्त करो अच्छी तरह से, इत्मीनान से शान से जियो और भगवान को प्राप्त करो। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? एनी वन क्वेश्चन? यस सर, प्रश्न है? तो इसका मतलब आप सब लोग चतुर्मास्य के थोड़े थोड़े क्यों ना हो व्रत का पालन करेंगे और भगवान को अपना बना लेंगे। बहुत कीमती जीवन है प्रभु जी, ये 2017 गुजर गया ना तो 18 आ जाएगा, तभी आप रिवर्स नहीं कर सकते कुछ। तो 18 का अधिक मास मिला आपको और 4 मास मिलेंगे, वो खत्म हो गए तो 19 में वो नहीं वापस मिलेगा। अरे अधिक मास गया रे मेरा 18 का, भूल ही गया उसको, अभी कभी आएगा, अभी 21 में आएगा। वो गया जो पिछले वाला गया ना, वो गया सब कुछ, जो पीछे गया वो गया, वापस कभी भी कितना भी हजारों लाखों करोड़ों रुपया देंगे ना तो 1 मिनट भी आपको वापस नहीं मिलने वाला है। इसलिए अभी जो है उसको कहते हैं प्रेजेंट। मतलब अभी का मतलब क्या होता है? अभी का मतलब क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या है? गिफ्ट, गिफ्ट है ना। मैंने आपको प्रेजेंट दिया मतलब क्या? गिफ्ट दिया, पारितोषिक दिया, बख्शीश दिया। तो अभी के समय को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। तो अभी का समय जो है ना वो आपको, आपके लिए भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, उसको उस तरह से समझो आप। वर्तमान काल को प्रेजेंट कहते हैं, वर्तमान काल आपके लिए गिफ्ट है, भगवान का भेंट है आपके लिए, उसको उस भाव से देखोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। एक बार और बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।